एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
सबका है तू ही सितारा, हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा, हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको से, ओ यीशु प्यारे तू सागर है, सबका है, तू ही सितारा परम पिता ने है तुझको भेजा। अब सबका है तू ही सितारा परम पिता ने है तुझको सताया अपने उस छल बल से। मुस्कुरा के तूने कहा था हे पिता इन्हें माफ करना, ना समझ है ये लोग सारे, ये न जाने ये क्या कर रहे हैं। ओ यीशु प्यारे तू ही है हमारा, तुझको सबने मिलके पुकारा। ओ यीशु प्यारे तू ही है हमारा, तुझको सबने मिलके पुकारा। हम सबका है तू ही सितारा परम पिता ने है तुझको भेजा। हम सबका
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजोर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। परमेश्वर आप सबों को अपने वचनों से आशीषित करे। आइए हम इससे पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे पास आते हैं, हमें तेरे वचनों से बहुतायत से आशीषित कर। मेरे श्रोताओं के संग पिता वे तेरे वचन को सुनकर समझने सके और तेरे पास आने सके। मेरे संग पिता तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरा सामर्थ से तेरे वचनों को बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। आज का संदेश का शीर्षक है इतिहास में परमेश्वर के कार्य। बीते संवाद में हम परमेश्वर के वचन और किस तरह वह प्रेरणा से परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है उसके बारे में सीख रहे थे। आज हम लोग उसके विषय में और अधिक सीखेंगे और परमेश्वर के कार्य जो इतिहास में किया गया उसके विषय भी सीखेंगे। बाइबल परमेश्वर के विचारों एवं अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का साधन नहीं है। मनुष्य अक्सर यह कहेंगे कि यह विचार तो परमेश्वर के नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ने बाइबल में स्वयं को किसी शब्दों में, तर्क में, बयानबाजी में परीक्षण के लिए नहीं डाला है। बाइबल के लेखक परमेश्वर के लिखने वाले थे, ना कि उसकी कलम। प्रेरणा मनुष्य के शब्दों या उसकी अभिव्यक्ति पर कार्य नहीं करती, परंतु स्वयं मनुष्य पर, जो पवित्र आत्मा के प्रभाव से, विचारों से प्रभावित हो जाता है। लेकिन शब्द व्यक्तिगत मन का प्रभाव प्राप्त करते हैं। पवित्र मन एवं इच्छा मानव मन एवं इच्छा के साथ मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य के बोल परमेश्वर के वचन हो जाते हैं। एक घटना में हमारे पास परमेश्वर के द्वारा बोले व लिखे गए हूबहू शब्द हैं। 10 आज्ञाएं वे परमेश्वर के हैं, मानवीय रचना के नहीं। निर्गमन 20:1-17, 31:18, व्यवस्था विवरण 10:4-5 में हम देख सकते हैं। फिर भी इन्हें मानव भाषा की सीमाओं के अंतर्गत ही व्यक्त करना पड़ा। बाइबल तब मानवीय भाषा में व्यक्त दिव्य सत्य है। एक बच्चे को भौतिक विज्ञान सिखाने के प्रयत्न की कल्पना करें। इसी प्रकार की समस्या का सामना परमेश्वर करता है जब वह दिव्य सच्चाइयों को पापमय सीमित मानवता को बताने का प्रयत्न करता है। यह हमारी सीमाएं ही हैं जो उसे हमसे संवाद करने से प्रतिबंधित करती है। अवतरित यीशु एवं बाइबल के बीच एक समानता पाई जाती है। यीशु परमेश्वर और मनुष्य संयुक्त था, दिव्य और मानव एक में, तो बाइबल दिव्य एवं मानवीय संयुक्त है। जिस प्रकार मसीह के लिए कहा गया, उसी प्रकार बाइबल के लिए भी स्वीकार किया जा सकता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, यूहन्ना 1:14। यह दिव्य मानवीय का मेल बाइबल को साहित्यिक कार्यों में विशिष्ट बनाता है। प्रेरणा एवं लेखक के विषय में आइए हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। पवित्र आत्मा ने दिव्य सत्य को बताने के लिए विशेष व्यक्तियों को तैयार किया। बाइबल विस्तार से यह नहीं समझाती है कि उसने इन व्यक्तियों को कैसे योग्य बनाया, परंतु किसी तरह से उसने दिव्य और मानवीय प्रतिनिधि के बीच एक गठजोड़ का निर्माण किया। बाइबल को लिखने में जितना योगदान था उन्हें उनके प्राकृतिक गुणों के कारण नहीं चुना गया था। ना ही दिव्य प्रगटीकरण आवश्यक रूप से व्यक्ति को परिवर्तित करता है या उसे अनंत जीवन का आश्वासन देता है। बिलाम ने परमेश्वर के आदेशों के विपरीत चलने के बाद भी प्रेरणा के अंतर्गत एक दिव्य संदेश घोषित किया, जिसे हम गिनती 22 से 24 अध्याय में पढ़ते हैं। दाऊद ने, जिसे पवित्र आत्मा ने उपयोग किया, अनेक महान अपराध किए थे। भजन संहिता 51 में हम इसका झलक पा सकते हैं। बाइबल के संपूर्ण लेखक पापमय स्वभाव के थे। उन्हें प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता थी। इसे हम तुलना कर सकते हैं रोमियो 3:12 में से। वह प्रेरणा जो बाइबल के लेखकों ने अनुभव की प्रकाशन या दिव्य मार्गदर्शन से कहीं अधिक थी, क्योंकि ये उन्हें ही मिल सकती हैं जो सत्य की खोज करते हैं। वास्तव में बाइबल के लेखकों ने कभी कभी दिव्य संदेश को जो उन्होंने पहुंचाया पूरी तरह समझे बिना लिखा, जिसे हम पढ़ सकते हैं 1 पत्रस 1:10-12 में। संदेशों के प्रति लेखकों की प्रतिक्रियाएं एक समान नहीं थी। दानियल और यूहन्ना ने कहा कि वे अपने लेखों पर बहुत ही हैरान थे, दानियल 8:24 और प्रकाशित वाक्य 5:4। और 1 पत्रस 1:10 इस बात की ओर संकेत करता है कि अन्य लेखक उनके या अन्यों के संदेशों के अर्थ खोजा करते थे। कभी कभी व्यक्ति विशेष एक प्रेरित संदेश की घोषणा करते हुए डरते थे, और कुछ एक तो परमेश्वर से बहस भी करते थे। हबाकुक 1:1-3 और 4:1-11 में हम पढ़ें। प्रगटीकरण की प्रणाली और विषय वस्तु को हम आइए देखें। अक्सर पवित्र आत्मा दिव्य ज्ञान को स्वप्न एवं दर्शन के माध्यम से बताता था, इसे हम गिनती 12:6 में पढ़ सकते हैं। कभी कभी वह स्पष्ट रूप से या आंतरिक इंद्रियों द्वारा बोलता था। परमेश्वर ने सामुएल से उसके कानों में बात की, 1 सामुएल 9:15। जकरिया को स्पष्टीकरण के साथ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मिला, 4:4। स्वर्ग के दर्शन जो पौलुस एवं यूहन्ना को मिले वे मौखिक आदेशों के साथ थे, 2 कुरिन्थियों 12:1-4। प्रकाशित वाक्य 4:5। एजेकियल ने अन्य स्थानों पर घटनाओं को घटित होते हुए देखा, 8:8। कुछ लेखकों ने अपने दर्शनों में दर्शन का हिस्सा बनकर स्वयं भाग लिया और दर्शन का हिस्सा होते हुए कुछ कार्य किए, प्रकाशित वाक्य 10 को हम पढ़ सकते हैं। विषय के रूप में कुछ को तो आत्मा ने होने वाली घटनाओं को प्रकट किया, दानियल 2:7, 8 और 12 अध्यायों में। अन्य लेखकों ने या तो स्वयं के अनुभवों के आधार पर या समय के मौजूदा ऐतिहासिक लेख प्रमाणों से चुनी हुई सामग्री को लेकर ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज किया, न्यायों 1 सामुएल 2 सामुएल सुसमाचार के पुस्तकें, प्रेरितों के काम, प्रेरणा एवं इतिहास के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। बाइबल का दावा है कि संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर से प्रेरित हैं या परमेश्वर की श्वास हैं, धर्म की शिक्षा के लिए आधिकारिक एवं लाभदायक है। दूसरा तिमोथियस 3:15-16। चयन प्रक्रिया में दिव्य मार्गदर्शन के बारे में कोई सवाल नहीं रखता है, चाहे जानकारी व्यक्तिगत अवलेख अवलोकन मौखिक या लिखित स्रोतों से या सीधे प्रकटन से आई हो। यह सब पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में लेखक तक आती है। यही बाइबल की विश्वसनीयता की गारंटी देता है। बाइबल मानव जाति के साथ उनकी गतिशील बातचीत में परमेश्वर की योजना को प्रकट करती है, ना कि काल्पनिक सिद्धांतों के संग्रह में। उसका स्व प्रगटीकरण सत्य घटनाओं में जड़ित हैं जो एक निश्चित समय व स्थान पर घटित हुई। उन ऐतिहासिक विवरणों की विश्वसनीयता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे परमेश्वर के चरित्र और हमारे लिए उसकी योजना को समझाने की रूपरेखा तैयार करते हैं। एक सही ज्ञान अनंत जीवन तक ले जाता है, परंतु एक गलत धारणा भ्रम या मृत्यु की ओर ले जाती है। परमेश्वर ने कुछ विशेष जनों को आदेश दिया कि वे इज़राइल के साथ उसके आचरण पर एक इतिहास लिखें। धर्मनिरपेक्ष इतिहास से भिन्न दृष्टिकोण से लिखे गए ये ऐतिहासिक विवरण बाइबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गिनती 33:1-2, यहोशू 24:25-26, एजिकियल 24:2। दिव्य दृष्टिकोण से यह हमें एकदम सही विषयनिष्ठ इतिहास प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा ने लेखकों को विशेष अंतर्दृष्टि दी ताकि वे अच्छाई एवं बुराई के बीच विवाद की घटनाओं को दर्ज कर सके, जो परमेश्वर के चरित्र को प्रदर्शित करती हैं और लोग जो उद्धार की खोज में हैं उन्हें मार्गदर्शन देती हैं। ये ऐतिहासिक घटनाएं प्रारूप या उदाहरण हैं जो हमें समझाने के लिए लिखी गई हैं, जिन पर युगों का अंत आ पड़ा है। 1 कुरिन्थियों 10:11। पौलुस कहता है, जो कुछ भी पूर्व में लिखा गया हमें शिक्षा देने के लिए लिखा गया, ताकि शास्त्रों की सहनशीलता द्वारा और पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन से हमें आशा मिले। रोमियों 15:4। सदोम और अमोरा का विनाश एक उदाहरण या चेतावनी के रूप में कार्य करता है। 2 पत्रस 2:6 और यहूदा का 7वां पद। अब्राहम की धार्मिकता का अनुभव प्रत्येक विश्वासी के लिए एक उदाहरण है। रोमियों 4:1-25, याकूब 2:14-22। यहाँ तक कि पुराने नियम की व्यवस्थाएं गहरे आत्मिक अर्थों से भरपूर आज हमारे लाभ के लिए लिखी गई हैं। 1 कुरिन्थियों 9:8-9। लूका उल्लेख करता है कि उसने उसके सुसमाचार इसलिए लिखे क्योंकि वह यीशु के जीवन का लेखा जोखा देना चाहता था, कि तुम उन बातों की निश्चितता को जान लो जिसकी तुम्हें शिक्षा दी गई थी। लूका 1:4। यूहन्ना द्वारा यीशु के जीवन की किन घटनाओं को अपने सुसमाचार में सम्मिलित करने का मापदंड यह था कि तुम यह विश्वास कर सको कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20:31। परमेश्वर ने बाइबल के लेखकों द्वारा इतिहास को इस तरह पेश करने के लिए प्रेरित किया जो हमें उद्धार के लिए मार्गदर्शन करे। बाइबल में विशेष व्यक्तियों की जीवनियां दिव्य प्रेरणा का एक और प्रमाण प्रदान करती हैं। ये विवरण सावधानीपूर्वक उनके चरित्र की कमजोरियां एवं ताकतों का वर्णन करते हैं। यह ईमानदारी से उनके पापों एवं उनकी सफलताओं को दर्शाते हैं। नूह के आत्मसंयम को या अब्राहम के छल को छिपाने के लिए कोई कोशिश नहीं है। मूसा, पौलुस, याकूब और यूहन्ना के गुस्से का प्रदर्शन भी दर्ज हैं। बाइबल का इतिहास इज़राइल के सबसे बुद्धिमान राजा की असफलताओं को एवं 12 कुलपतियों और 12 प्रेरितों की विफलताओं को उजागर करता है। शास्त्र उनके लिए कोई बहाना नहीं बनाता है और ना ही उनके अपराध बोध को कम करने का प्रयत्न करता है। यह उन सभी को जो वे थे और वे क्या बन गए या परमेश्वर की कृपा से वे जो बनने से चूक गए उन्हें दर्शाता है। बिना आत्मिक प्रेरणा से कोई भी जीवनी लेखक ऐसी यथार्थ समीक्षा नहीं लिख सकता था। बाइबल के लेखकों ने संपूर्ण ऐतिहासिक विवरणों को जो उसमें हैं सत्य ऐतिहासिक लिखित प्रमाणों के रूप में देखा, ना कि कोई कल्पित कथा या चिन्ह के रूप में। अनेक समकालीन शंकाशील व्यक्ति आदम और हवा, योना एवं जलप्रलय की कहानियों को अस्वीकार करते हैं, मगर यीशु ने उन्हें ऐतिहासिक रूप से सटीक एवं आत्मिक रूप से उपयुक्त स्वीकार किया। मत्ती 12 का 39 से 41, मत्ती 19 का 4 से 6 और 24 का 37 से 39। बाइबल पक्षपाती प्रेरणा या प्रेरणा की मात्रा नहीं सिखाती। यह परिकल्पनाएं अनुमानित हैं जो बाइबल को उसके पवित्र अधिकारों से वंचित करती हैं। आइए हम शास्त्र की सटीकता के विषय में पढ़ें। जिस तरह यीशु देहधारी हुआ एवं हमारे बीच डेरा किया, यूहन्ना 1:14 में हम पढ़ते हैं, उसी तरह बाइबल हमें मानव भाषा में दी गई ताकि हम सत्य को समझ सके। शास्त्रों की प्रेरणा उनकी विश्वसनीयता की गारंटी देती है। इसे खत्म करने के प्रयत्नों के बावजूद बाइबल को बड़े ही आश्चर्यजनक, यहाँ तक कि चमत्कारिक सटीकता के साथ संरक्षित रखा गया है। मृत सागर के लपेटे हुए कागजी दस्तावेजों का पुराने नियम की बाद की हस्तलिपियों के साथ तुलना करना इस बात को दर्शाता है कि कितनी सावधानी के साथ इसे स्थानांतरित किया गया है। यह शास्त्र की विश्वसनीयता और निर्भरता को परमेश्वर की इच्छा का अचूक प्रकटीकरण होने की पुष्टि करता है। आइए हम शास्त्र के अधिकार के विषय में पढ़ें। यहाँ हम पाते हैं शास्त्र के पास दिव्य अधिकार है, क्योंकि इनमें परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से बातचीत करता है। इसलिए बाइबल परमेश्वर का लिखित वचन है। इस दावे के प्रमाण कहाँ हैं और हमारे जीवन एवं ज्ञान की तलाश में इसके क्या प्रभाव हैं? आइए हम आगे पढ़ते हैं। शास्त्र के दावे। बाइबल के लेखकों ने यह गवाही दी है कि उनके संदेश सीधे परमेश्वर की ओर से आते हैं। यह प्रभु का वचन है जो यिर्मयाह, एजिकेल, होसे एवं अन्यों के द्वारा आया। यिर्मयाह 1:1-9 पदस्थलों में, एजिकेल 1:3, होसे 1:1, ओएल 1:1, योना 1:1। प्रभु के संदेश वाहक के रूप में हगै 1:13 और दूसरा सामुएल 36:16। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को उसके नाम से बोलने का आदेश यह कहते हुए मिला, प्रभु यहोवा यूं कहता है, एजिकेल 2:5, यशायाह 7:7। उसके शब्द उनका दिव्य परिचय व अधिकार देते हैं। यीशु एवं शास्त्र के अधिकार। अपने पूरे सेवा काल के समय यीशु ने शास्त्र के अधिकार पर बल दिया था। जब शैतान द्वारा परीक्षा में डाला गया या विरोधियों के साथ लड़ाई में यह लिखा है, उसका बचाव यूं आक्रमण था। मत्ती 4:4-7, लूका 2:17। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, उसने कहा, परंतु हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है। मत्ती 4:4। जब पूछा गया कि कोई अनंत जीवन में कैसे प्रवेश पा सकता है, उसने उत्तर दिया, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है, लूका 10:26। यीशु ने बाइबल को मानव विचारों एवं परंपराओं से ऊपर रखा। उसने शास्त्र के अधिकार को दरकिनार करने के लिए यहूदियों को फटकारा, मरकुस 7:7-9, एवं उनसे आग्रह किया कि शास्त्र को और अधिक ध्यान से पढ़ा करें। उसने कहा, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा है, मत्ती 21:42 और मरकुस 12:10-26। पवित्र आत्मा एवं शास्त्र के अधिकार को हम देखें। यीशु के जीवन के समय आत्मिक अगुवाओं एवं बेपरवाह भीड़ उसकी असली पहचान का पता नहीं लगा सकी। कुछ को लगा कि वह तो यहूना बपतिस्मा देने वाला एलिया या यिर्मयाह के समान भविष्यवक्ताओं में से केवल एक मनुष्य है। जब पतरस ने मान लिया कि यीशु ही मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तब यीशु ने बताया कि वह दिव्य स्पष्टीकरण ही था जिसने उसके स्वीकरण को संभव किया। मत्ती 16 का 13-17 पौलुस इस सत्य पर बल देता है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। 1 कुरिन्थियों 12:3 शास्त्र अधिकार के दायरे हैं कि शास्त्र एवं विज्ञान के बीच विरोधाभास प्राय अनुमान का नतीजा होता है। अगर हम शास्त्र के साथ विज्ञान का सामंजस्य नहीं कर पाते हैं तो वह इसलिए क्योंकि हमारे पास विज्ञान की या प्रकटीकरण की एक त्रुटिपूर्ण समझ है, परंतु सही समझने पर यह दोनों उत्तम सामंजस्य में हैं। तो हम पाते हैं कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है। पवित्र शास्त्र में एकता है, पुराना नियम और नया नियम में एकता है। यह हमारे भलाई के लिए, हमारे उद्धार के लिए दिया गया है। यह परमेश्वर का प्रेम का पत्र है। आइए हम इसे पढ़ें। इसमें हम परमेश्वर के कार्यों को पाते हैं, हमारे लिए उदाहरण है। हम इसे पढ़ें और परमेश्वर के रास्ते में चलें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता तेरे वचनों के लिए। हमें तेरे वचनों को पढ़ने और जानने और उसके पीछे चलने के लिए तेरे पवित्र आत्मा से सबों को बहुत आशीष दे। मसीह के नाम से सुना दया से प्रार्थना करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaveentist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।